श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 20 श्लोक संख्या 40 दिनांक 3 अप्रैल 2015 स्पीकर हिज ग्रेस माधवानंद प्रभु।
शरद ऋतु के आगमे आगमन से आत्मनि जब आत्मा उपरते भौतिक कार्यों से विरक्त सम्यक पूरी तरह मुनि ही मुनि व्युपरत त्याग कर आगमः वैदिक मंत्रों का पाठ। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। शरद ऋतु के आते ही समुद्र तथा सरोवर शांत हो गए। उनका जल उस मुनि की तरह शांत हो गया जो सारे भौतिक कार्यों से विरक्त हो गया हो और जिसने वैदिक मंत्रों का पाठ बंद कर दिया हो। तात्पर्य, मनुष्य भौतिक उन्नति योग शक्ति तथा निर्विशेष मोक्ष के हेतु सामान्य वैदिक मंत्रों का पाठ करता है, किंतु जब मुनि निजी इच्छा से पूर्णतया मुक्त होता है तो वह एकमात्र परमेश्वर के दिव्य यश का उच्चारण करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 20वें अध्याय जिसका शीर्षक है वृंदावन में वर्षा तथा शरद ऋतु, इस अध्याय का 40वां श्लोक पढ़ रहे हैं। निश्चलाम्बु भूरतुष्णिम समुद्र शरदागमे आत्मन्युपरते सम्यक मुनि विपरतागमः। शरद ऋतु के आते ही समुद्र तथा सरोवर शांत हो गए। उनका जल उस मुनि की तरह शांत हो गया जो सारे भौतिक कार्यों से विरक्त हो गया हो और जिसने वैदिक मंत्रों का पाठ बंद कर दिया हो। ये जो अध्याय चल रहा है श्रीमद् भागवतम का, जिसमें हम देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी एक अत्यंत कुशल ऐसे आचार्य के रूप में परीक्षित महाराज को प्रकृति से आए हुए अनेकों उदाहरण आविष्कार इनसे एक व्यक्ति क्या सीख सकता है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और आज के श्लोक में शरद ऋतु यानी अभी अभी वर्षा खत्म हुई है, अभी भी घास हरी है, मिट्टी पूर्ण शुष्क नहीं है, अभी भी उसमें थोड़ा सा गीला है, गीलापन है, तो पैरों को सुखद है और हर जगह अभी अभी फूल आ रहे हैं, ऐसा सुंदर वातावरण है। और उस समय हम देखेंगे ज़्यादा कभी कभी वर्षा होती है और ज़्यादा करके जो झीलें हैं जहाँ जहाँ पानी एकत्रित हुआ है बिल्कुल शांत हो जाते हैं, उनका जो पानी है जो कि पहले बरसात के कारण बिल्कुल साफ सुथरा नहीं दिखता था, जिसमें गंदगी दिखती थी अनेक मिट्टी के कणों के कारण, वो अभी बिल्कुल साफ दिख रहा है। आप अंदर देख सकते हैं मछली कैसे तैर रही है और उसमें कोई तरंग नहीं है। और ऐसे जो उदाहरण है इनसे हम अनेकों शिक्षाएं ले सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद भी अपने शिष्यों को इसी प्रकार से कुशलता से अनेकों बार जब वो सवेरे घूमने निकलते थे तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दिखा देते जिससे वो सीख जाते थे कुछ ना कुछ। एक दिन श्रील प्रभुपाद जा रहे थे और उन्होंने देखा कि सारा जो एक लॉन है ऐसे बड़े सब जगह घास, लेकिन एक हिस्सा मिट्टी का जहाँ पर घास पीला पड़ गया था, सूख गया था। तो उन्होंने सबको बुलाया, अपने शिष्यों को बोले व्हाट इज दिस, आप बताइए क्या है। तो किसी ने बोला ये पीली घास है। तो किसी ने और कोई जवाब दिया तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है आप सब बोल रहे हो सही है, दिख रहा है वैसे ही तो दिख रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है, इस घास को पीलापन क्यों आ गया, इस घास को ये मरने क्यों लगी है, और वो घास जो है वो अभी तक हरी हरी क्यों है। फिर उन्होंने बताया कि क्योंकि इसके जो जड़ है, ये जो अभी पीली घास है इसकी जड़ जो है उसका संबंध जो पानी का स्रोत है उससे चला गया है, इसलिए भी वो मरने वाली है। उसी प्रकार से वो कहते हैं, श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जब व्यक्ति जीवात्मा भगवान से अपना संबंध छोड़ देता है तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से घास जिसका अभी कोई उपयोग नहीं है वैसे ही बन जाता है, निरुपयोगी बन जाता है। फिर एक बार ऐसे ही चल रहे थे, एक बड़ा पेड़ जिससे वो हर दिन गुजरते थे, तो गुजरते एक दिन उनको उन्होंने सहज सबको बुला लिया, आइए देखो ये क्या है। तो सब लोग ने देखा यहाँ तो बहुत सारे पंछियों ने अपनी विष्ठा डाली है। तो फिर से वो सोच रहे हैं प्रभुपाद क्या बोलना चाहते हैं, और प्रभुपाद ये पंछियों की विष्ठा है। तो प्रभुपाद ने कहा कि बाकी पेड़ को देखो, तो बाकी पेड़ देखे तो वो स्वच्छ थे। प्रभुपाद ने कहा इसी पेड़ पे ये विष्ठा क्यों है, फिर से वो समझ नहीं पाए। तभी उन्होंने कहा कि देखो आप कौन सी भी योनि में हो, हर पंछी भी अपना एक घर बना लेता है, और उसके कारण उसने इस झाड़ को इस पेड़ को चुन लिया है कि मेरा घर है, और इसी के कारण यहीं पर आता है। तो आप ये मत समझो कि आप बुद्धिमान मनुष्य हो इसलिए घर बना लेते हो, पंछी भी घर बना लेते हैं, उसको उतनी बुद्धि है और एक ही घर में रहता है, और इसी के कारण एक ही जगह पर आप देख रहे हो कि सारी विष्ठा गिर रही है। इस प्रकार से प्रभुपाद कहते थे कि निसर्ग से, प्रकृति के आविष्कारों से हम लोग बहुत सारी चीजें अपने जीवन में सीख सकते हैं और उनका उपयोग अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर सकते हैं। कब? जब हम प्रकृति को उस नजर से देखेंगे, जब प्रकृति को हम माँ समझ, क्योंकि वो माँ है, हमें शिक्षा देगी ही देगी, प्रकृति हमारी माँ है और भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता है। दासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदापिता। भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति है उसमें मैं आप सब लोगों का पिता हूं, मैंने ये सारे बीज डाले हैं, इसी से आपकी सबकी उत्पत्ति हुई। तो हमारी सबकी उत्पत्ति कहाँ से है? भगवान से, प्रकृति से। प्रकृति हमारी माँ है, तो माँ क्या करती है? बच्चे को सीख देती है, हमेशा कुछ ना कुछ बताएगी। लेकिन जब बच्चा उस माँ को माँ मानेगा, तब जब बच्चा कोई सोचता है कि प्रकृति मेरी दासी है, मैं उसका भोग करूंगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई बात सीख नहीं सकता है। इसलिए सर्वप्रथम भक्त को अगर कुछ प्रकृति से सीखना है तो उसको ये सीखना है कि प्रकृति मेरी माँ है, ये प्रकृति के सारे आविष्कार मुझे कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। मुझे याद है हम बहुत साल पहले गोमुख गए थे और 5-6 लोग ही थे, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, वैष्णव सेवा प्रभु और ऐसे 5-6 लोग हम लोग। तो गोमुख चढ़ते समय तो 17-18 किलोमीटर आप ऊपर चढ़ते रहते हो, तो इससे और कुछ बोल नहीं सकते आप लेकिन वहां से आते समय फिर महाराज हमें अलग अलग प्रकार की चीजें दिखाने लगे, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने सीखे दी। पहले तो उन्होंने गंगा को दिखाया, बोला गंगा से क्या सीख रहे हो आप? फिर लोगों ने अलग अलग बताया, फिर उन्होंने कहा गंगा से हम ये सीखते हैं कि कितनी भी अड़चने आएगी, चट्टाने आएंगी, पेड़ आएंगे, पर्वत आएंगे, लेकिन सबको लांघ कर गंगा क्या कर रही है? अविरत समुद्र की ओर जा रही है। उसी प्रकार से एक भक्त का जो जीवन है, भक्त की जो चेतना है, उसके आड़े बहुत लोग आएंगे, चट्टाने आएंगी, परिवार आएगा, ये संसार आएगा, लेकिन वो क्या करेगा? उसको लांघ कर भगवान, समुद्र रूपी भगवान की तरफ हमेशा जाते रहेगा, वैसे उसकी चेतना रहती है। फिर हम लोग एक जगह पर आ गए जहाँ पर नदी छोटी थी और नदी में से नदी को पार करना था, तो पार करने के लिए केवल एक लकड़ा लगाया हुआ था, बहुत बड़ा लकड़ा, विशाल, और उसके ऊपर से बैलेंस कर करके उस तरफ जाना था। तो हम लोग उस तरफ गए, महाराज ने पूछा ये लकड़े से क्या सीख सकते हो? तो हमने कहा यहाँ बैलेंसिंग बहुत कठिन है हाँ ये बैलेंसिंग बहुत कठिन है। तो बोला हाँ ठीक है, लेकिन लकड़ी से क्या सीख सकते? फिर उन्होंने कहा कि लकड़े से हम लोग ये सीखते हैं कि हम मर जाएंगे फिर भी दूसरों की सेवा करेंगे। लकड़े से क्या सीखेंगे हम लोग? हम मर भी जाएंगे, ये भक्त का स्वरूप होता है। तरुरपि सहिष्णुता, मतलब एक तरु पेड़, उसकी सहिष्णुता क्या है? वो कट जाता है लेकिन फिर भी या तो जलाने के लकड़ी के उपयोग में आएगा, या बोट बनाने के काम में आएगा, या इसी प्रकार से किसी नाले पे ऊपर पार करने के लिए काम आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, कि प्रकृति के आविष्कारों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं परीक्षित महाराज अभी ऐसी स्थिति में से गुजर रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आपको कैसे रहना चाहिए। और ये श्लोक बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जिस प्रकार से एक योगी जिसने इस सारे संसार की भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया है, उसके अंदर और कोई इच्छा नहीं है, उसी इस झील की तरह जो बिल्कुल शांत है, उसी तरह एक योगी का मन शांत होता है, उसमें कोई तरंग नहीं आते हैं। गीता में दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसका वर्णन करते हैं, कौन सा योगी शांत है? तो कहते हैं विहाय कामान सर्वान पुमांश्चरति निष्पृहा निर्ममो निरहंकारा सशांतिम अधिगच्छति। किसको शांति मिलती है? आप लोगों में से कितने लोगों को शांति चाहिए? चाहिए कि नहीं? शांति चाहिए, हम सब लोग चाहते हैं, प्रभुपाद असल में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं बहुत खुश रहना चाहता हूँ, तो आप खुश नहीं रह सकते जब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। फर्स्ट स्टेप इज शांति। जो शांत है वही प्रसन्न होगा, जो अशांत है वो कितने भी प्रसन्नता की चीज उसके सामने ला के रखेंगे तो भी कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए प्रथम स्थिति है कि हमें शांत बनना चाहिए। तो यहाँ पर गीता में भगवान अर्जुन को बता रहे कि कौन शांत होता है, जिसने सारे इंद्रिय तृप्ति के जो विषय है उनकी जो इच्छा है उनको त्याग दिया है। कैसे लगता है, हाँ संभव है? जिसने सारे इंद्रिय तृप्ति के विषयों को इच्छाओं को त्याग दिया है। हम लोग कभी कभी प्रचार करते तो सोचते हैं कि ये श्लोक बता दिया मतलब मेरा काम हो गया। लेकिन सोचो आप कि सारे मतलब जीरो करना है, कोई भी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचना नहीं है, कितना असंभव लगता है। फिर कहते हैं जो निर्मम हो चुका है, मतलब ये संसार में उसका कोई कुछ है ही नहीं, ऐसे वो मानता है, विश्वास रखता है उसमें कि मेरा इस संसार में कुछ नहीं है, यहां तक कि मेरा ये शरीर भी मेरा नहीं है। कितने लोग आप में से सोचते हैं? कठिन है ये प्रश्न पूछना भी कठिन है। फिर कहते हैं निस्पृह, यानी कि उसके अंदर कोई अहंकार ही नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है कि अगर कोई हम किसी को बोले आपको अहंकार को छोड़ देना चाहिए प्रभु जी, लेकिन अहंकार को छोड़ना बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि इन्होंने कई हजारों साल तक तपस्या रखी, लेकिन अहंकार नहीं जाता। तो भगवान क्या क्या कह रहे हैं, एक तो इस भौतिक जगत की कोई भी इंद्रिय तृप्ति की आशा मत रखो, उसकी इच्छा मत करो, इस संसार में आपका कुछ ऐसा सोचो मत, और क्या कह रहे हैं, आपका अहंकार को त्याग दो। कितना आसान है भगवान को बोलना, लेकिन करना उतना ही कठिन है। ऐसा व्यक्ति फिर वो कहते हैं स शांति अधिगच्छति, उसको शांति प्राप्त होगी। तो हम लोग सोचेंगे चलो बहुत कठिन एग्जाम दिखता है। हाँ ये जमने वाला नहीं है, लेकिन जमेगा, उसके आगे बताएंगे भगवान। अभी जैसे हम लोग सोच रहे हैं वैसे अर्जुन भी सोच रहा है, अर्जुन भी ऐसे ही सोच रहा है कि ये कैसे संभव है। तो भगवान उसके पहले के श्लोक में बताते हैं कि ऐसे मत समझो कि अपने ये सब करना है मतलब, फिर वो तो इच्छाएं तो आती है उसका क्या करने का, इच्छाएं जरूर आएंगी। तुकाराम महाराज मराठी के महाराष्ट्र के महान संत, इनको किसी ने पूछा कि बुआ, मराठी में बुआ कहते हैं महाराज, जो हम लोग महाराज बोलते हैं ना वैसे वो बुआ कहते हैं, बुआ माझा मन, मेरा मन जो है वो मेरे काबू में नहीं है, यहाँ वहाँ भागते रहता है, और आप कहते हो कि भगवान विट्ठल के नाम पे ऊपर मन को रखो, कैसे संभव है, वो तो रहता ही नहीं एक जगह, तो कुछ बताइए कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो तुकाराम ने कहा कि देखो ऐसा है कि मन जहां जाता है उसको जाने दो, तुम मत जाओ। क्या कहा, मन जहां जाता है उसको जाने दो, तुम मत जाओ। इसका मतलब क्या है कि मन तो ऐसे ही करेगा, यहां वहां भागेगा, लेकिन हमको मन के साथ नहीं भागना चाहिए। तो पहला इसका मतलब क्या है, हम और मन अलग है। हम लोग श्लोकों में बताते हैं खम मन बुद्धि रे बचा, हमारा सूक्ष्म शरीर का वर्णन करते हैं हम लोग, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इसी प्रकार से बात करते कि मैं मन हूं, आज मुझे अच्छा नहीं लगता। असल में आप उसका तपास करोगे कि आज मुझे अच्छा नहीं लगता है, कौन बोल रहा है, कौन बोलता है ये, हाँ मन बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे हो। उसको चुप कराना, आपको चुप बैठ। मंगल आरती में आके उसको, तेरे को नींद आ रही है तो कोई, इसको नींद आ रही है, असल में मन को आ रही है। जो अपने बीच में महाराज आए थे ना, क्या नाम था उनका, हाँ बृहद भागवत महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने पूरा वर्णन किया उसका कि कैसे आप जब जप करने को बैठेगे तो क्या क्या मन बोलेगा। वो पहले उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसका रिसर्च किया हुआ है। तो बोले मन मन ऐसे ही बोलेगा कि उसकी तरफ देख के हंस। हाँ बाजू का जो डिवोटी है, अभी इसमें कोई हंसने में क्या प्रॉब्लम है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन वो हंसना भी असल में मन आपको भगवान के नाम से विचलित कर रहा है। या कभी कभी ऐसे कितने बज गए, अब ये बहुत इनोसेंट सवाल लगता है कि नहीं, लेकिन इनोसेंट नहीं है वो, मन आपको बोल रहा है कि तू भगवान का नाम के क्यों क्यों ध्यान दे रहा है, दूसरा कुछ देख, घड़ी देख, या बीच बीच में आएगा तुझे भूख लगी है शायद, फिर वो प्रसाद के बारे में प्रश्न पूछेगा। तो उन्होंने इसके तरीके भी बताए क्या क्या करने का, कि अगर कभी आपने दूसरा किसी भक्त को देख लिया, पहले तो देखो मत, आंखें थोड़ी सी बंद रखो, लेकिन देख लिया और आपको ऐसे लगा, क्योंकि मन तभी ऐसे नहीं कि आप सोच रहे कि कितना प्यारा डिवोटी है, ऐसा नहीं, वो मन आपको बता रहा है कि इसके साथ तू हंस, कुछ वार्तालाप कर, क्यों, क्योंकि उसको भगवान के नाम से उसको छुड़ाना है, ये मन का काम है। तो हमें मन के साथ नहीं जाना चाहिए। इसी का वर्णन भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो मन के साथ भागता नहीं वही शांति प्राप्त कर सकता है, ये भगवान बता रहे हैं। उसका वर्णन क्या कर रहे हैं, आपूर्य माणाम अचलम प्रतिष्ठम, क्या बता रहे हैं, आपूर्य माणाम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंत यद्व, समुद्र आप, आप का मतलब पानी, समुद्र में जिस प्रकार से नदियों से भर भर के पानी आता है, खास करके वर्षा के मौसम में भर भर के पानी आता है, बाढ़ आ जाती है, लेकिन फिर भी इतना पानी आने के बावजूद समुद्र अपनी सीमाओं को कभी लांघता नहीं, समुद्र वैसे निश्चल रहता है। तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे, उसी प्रकार से अनेकों हजारों करोड़ों लाखों इच्छाएं हमारे मन में आती रहेगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक इच्छा को छोड़ दो दूसरे आते रहे, और अनेकों सूक्ष्म इच्छाएं आएंगी। सशांति मापनोति न काम कामी, लेकिन इसके पीछे जो दौड़ता नहीं है इसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, इसी को शांत व्यक्ति कहता है, उसी को शांति प्राप्त होने वाली है, ऐसे भगवान गीता में अर्जुन को बता रहे हैं। तो हम लोग अकेले नहीं हैं, ऐसा जो ये शांति प्राप्त करने के लिए जो भौतिक संसारिक जो शक्तियां हैं इनसे जो झगड़ा चल रहा है उसमें हम लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग सब साथ में हैं। हर एक का मन ऐसा ही है, लेकिन उस मन को काबू में करने के लिए उसके मन के पीछे न भागना, ये उसका उपाय है। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को जब शिक्षाएं देते हैं तो एक बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं, बहुत सरल, वो क्या कहते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। वो क्यों शांत है, कृष्ण भक्त हमेशा आपको शांत दिखेगा, गंभीर दिखेगा, आनंद में दिखेगा, क्यों दिखता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। और फिर कौन अशांत है, वो कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। कौन कौन अशांत, अशांति कैसे आती है, जिसको भुक्ति चाहिए, भोग चाहिए संसार का, जिसको सिद्धि प्राप्त करनी है, पावर, या किसी को मुक्ति चाहिए, इस संसार से मोक्ष प्राप्त करके भगवान का जो प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति है, उसमें विलीन होकर अपने आप को भगवान समझना, जो कि उसके स्वभाव के विपरीत है। ये तीनों ही चीजें विपरीत होने के कारण, स्वभाव से विपरीत होने के कारण हमें कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है, जीवेर स्वरूप होय नित्य रे कृष्णदास। कृष्ण है नित्य दास। हमारा स्वरूप कृष्ण के दास के रूप में होने के कारण हम अगर भोग चाहेंगे, शक्ति चाहेंगे या मुक्ति चाहेंगे तो हम कैसे रहेंगे? अशांत रहेंगे। इसलिए ये तीनों चीज़ों से, भोगों से, सिद्धियों से, मुक्ति से, हमेशा मन को बार बार कहाँ लाना है? भगवान के चरण कमलों में लाना है। और इसीलिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे शास्त्रों से कि कैसे हमारे जैसे ही जीव इस शांति को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम के छठवें स्कंद में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहानी बता रहे हैं इंद्र और वृत्रासुर के युद्ध की। और वृत्रासुर और इंद्र का जब युद्ध हुआ तो वृत्रासुर इतना बलशाली था कि इंद्र का वज्र भी उसके ऊपर काम नहीं कर रहा था। यहां तक कि वृत्रासुर ने उसको एक एक ही चाटा मारा था तो ऐरावत के सहित ऐरावत को लेकर इंद्र कई कोसों दूर भाग गया था, गिर गया और निराश हो गया। निराश होकर सोचने लगा मैं कैसे जीत सकता हूं, और उसका चेहरे का रंग बिल्कुल फीका हो गया। तभी वृत्रासुर वहां से उसको बोलता है, अरे इंद्र अपना वज्र फिर से उठा ले। हाँ, एक क्षत्रिय को इस प्रकार से हारना नहीं चाहिए। हार जीत तो केवल एक प्रकृति के नियमों के अनुसार फिक्स्ड है, भगवान ही उसमें कुछ निर्णय देने वाले, आप चिंता मत करो, अपना कर्तव्य पार करो। इस प्रकार से बहुत सुंदर ज्ञान आत्मा के बारे में, कर्तव्य के बारे में देने लगे। इंद्र सोच रहे कौन व्यक्ति है ये, राक्षस है कि महान कोई ऋषि है? और फिर वृत्रासुर जान गए कि इंद्र मुझे ऐसे नहीं मार सकते, इंद्र को मुझे ही बताना पड़ेगा मुझे कैसे मारो। और इंद्र को उन्होंने बताया कि करो उपयोग इस वज्र का। और ऐसे कहते हैं कि वृत्रासुर का शरीर इतना विशाल और इतना सख्त था कि एक साल तक वज्र उसके जो गर्दन है उसको तोड़ने का प्रयास करा था, एक साल के बाद टूटी गर्दन। तो परीक्षित अचानक प्रश्न पूछ लेते हैं कि ऐसे कैसे, ये तो राक्षस है पर इतना महान ज्ञान उसके पास कैसे आया, और क्यों भगवान की स्तुति कर रहा है, क्यों भगवान के भक्तों की स्तुति कर रहा है? तभी परीक्षित महाराज के इस प्रश्न से प्रसन्न होकर सुखदेव गोस्वामी उसको उसकी कहानी बताते हैं कि एक राजा थे सारे पृथ्वी के सम्राट, जिनका नाम था चित्रकेतु। अपनी राजधानी शूरसेन वहां से वो पृथ्वी को संभालते थे। बहुत सुंदर, बलवान, वैभव की कोई कमी नहीं है, ऐसा वैभव जो इंद्र को भी लज्जित करे। और ऐसे व्यक्ति होने के बावजूद, और उनकी पत्नियां भी एक दो नहीं थी, हम लोग को कभी कभी आश्चर्य लगता कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां कैसे थी, ऐसे आश्चर्य लगता ना कभी कभी लोग, ऐसा कैसे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है 16,108 रानियां कैसे हो सकती है? तो भगवान है। यहाँ पर आप चित्रकेतु महाराज के सोचेंगे तो उनकी पत्नियां कितनी थी? 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़ पत्नियां थी उनकी। मतलब उनका वैभव कितना रहेगा कि हर पत्नी के लिए कम से कम महल नहीं तो एक कमरा तो होना चाहिए कि नहीं? तो और ऐसे 1 करोड़ पत्नियां होने के बावजूद और पूर्ण सक्षम होने के बावजूद उनको पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ था। तो बाहर से वो दिखाते थे सारा राज कारोबार सब अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन अंदर से बहुत दुखी थे। तो एक दिन अंगिरा मुनि घूमने को निकले, कोई विशेष कार्यक्रम उनके दिमाग में नहीं था, तो घूमने निकले। तो घूमते घूमते उन्होंने सोचा चलो महाराज चित्रकेतु के महल में जाके देखते क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही वो राज दरबार में आ गए तो महाराज चित्रकूट ने तुरंत खड़े हो गए उनको सिंहासन पर बिठाया, उनकी पूजा की और फिर उनके चरणों में बिल्कुल नम्रता से बैठ गए सर झुकाकर। और ऐसा आदर्श, इस प्रकार का व्यवहार देखकर अंगिरा मुनि बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता से उनको तरफ देखकर वो बोलते हैं कि महाराज सब कुछ सकुशल तो है, आपने जिस प्रकार से मेरी सेवा की, जिस प्रकार से साधुओं का सम्मान किया है, मैं जानता हूं कि आप धर्म का मार्ग को बहुत अच्छी तरह से अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन आपके मुख से, मुख की ग्लानी से ऐसे पता चल रहा है कि आपको कोई दुख है। तब महाराज चित्रकूट कहते हैं कि आपकी कृपा से सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मेरे जो पूर्वज हैं उनके प्रति जो मेरा एक कर्तव्य है कि इस वंश को चलाने के लिए कोई पुत्र रत्न होना, ये मैं पार नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। और आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, आप महान ऋषि हैं, आप कुछ करिए और मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हो, ऐसे कुछ योजना बनाइए। तो अंगिरा मुनि ने एक बहुत सुंदर यज्ञ किया और यज्ञ में से जो पायसम निकला उन्होंने राजा को दिया, राजा ने अपने सबसे प्रधान पत्नी कृतद्युति उनको दे दिया और उस कृपा प्रसाद से एक साल के बाद उनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। अंगिरा मुनि बोलकर गए थे कि ये पुत्र जो है आपके लिए बहुत हर्षदायी होगा, आनंद आएगा आपको, लेकिन वो दुख भी देगा, इसलिए उसका नाम हर्ष रोग शोक रख लीजिए। तो महाराज चित्रकेतु ने सोचा हाँ ठीक है, ऐसे होता है कभी कभी, बच्चे माँ बाप का सुनते नहीं हैं तो शोक तो होगा ही, लेकिन फिर भी पुत्र तो होना चाहिए। और पुत्र होने के बाद इस प्रकार से लीन हो गए पुत्र के प्रेम में और दिन रात पुत्र के साथ अपना समय बिताने लगे, और उसी रानी जो उसकी माँ थी उसके साथ समय बिताने लगे। तो बाकी जो 1 करोड़ रानियाँ थी वो सोचने लगे, अरे अभी राजा तो हमें देखते भी नहीं, हम तो दासियों से भी कम हो गए, कम से कम दासी को तो कभी कभी राजा देखने को मिलता है, हमको देखने को भी नहीं मिलते। तो असूया के कारण उन्होंने एक दिन उस पुत्र को विष पिलाकर मार दिया। और कृतद्युति सोच रही थी बच्चा सो रहा है। कुछ समय के बाद उसने दासियों को कहा कि जाओ पुत्र बहुत समय से सोया, उसको लेके आओ, मैं उसके साथ खेलना चाहते हूँ। तो जैसे दासी ने पुत्र को देखा वो समझ गई सोया हुआ नहीं, मर गया है, तो बहुत चिल्लाकर रोने लगी, डर गई कैसे मर गया, उसके सारे जो गात्र थे शिथिल थे। तो दासी जब अपने छाती पीट कर रोने लगी, रानी ने सुना, रानी भाग भाग कर आई, उसने देखा कपड़े खोलकर तो क्या निकला, पुत्र मरा हुआ था। और फिर एक ऐसा भयानक शोक उसके पूरे राज परिवार में, राजमहल में ऐसे हुआ कि सब लोग चिल्लाने लगे, सब लोग छाती पीट कर रोने लगे, दास दासियां रानी। और राजा ने जब सुना तो राजा भाग भाग कर गया और राजा बिल्कुल अंधा हो गया, उसको कुछ दिख नहीं रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि समझ के क्या हो गया है, अत्यंत दुख के कारण वो बिल्कुल देख नहीं पा रहा था, फिर भी अड़कड़ाते हुए कैसे भी करके बालक तक पहुंच गया। और वहां उसने देखा कि उसकी माता उसके साथ बात कर रही है, तू क्यों सोया है अब तक, तेरे पिता आए हैं, देखो उसको, उठो जागो। और इस प्रकार के माँ की इस चित्कार को, पुकार को सुनकर राजा और दुखी हुआ। राजा अपना सर उस बालक के पैर पर रखकर पटक पटक कर रोने लगा। ऐसा आकांत मचने पर अंगिरा मुनि वो तो तुरंत समझ गए क्या हो रहा है, और वो जानते भी थे क्या होने वाला है, तुरंत ही नारद मुनि को लेकर वहां पहुंच गए। दुख इतना जबरदस्त था कि राजा अंगिरा मुनि को पहचान नहीं पाए, नारद मुनि को पहचान नहीं पाए। वो कहने लगे कि आप कोई अवधूत हो, आप कौन हो, आप आए हो, कम से कम मेरे दुख का निवारण करो, इस पुत्र को जागृत करो। तो अंगिरा मुनि ने उस समय ऐसे समय में उनको कुछ तत्व ज्ञान दिया। उनको कहा, हे राजन, मैं वही अंगिरा मुनि हूँ जिसने आपको ये पुत्र दिया था, और ये ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि हैं। आप इनको पहचान नहीं पाए क्योंकि आप अत्यंत दुख में हो। मैं उसी समय जानता था कि ये पुत्र जाने वाला है, लेकिन उस समय अगर मैं तत्व की बात करता तो आप सुन नहीं पाते थे, इसलिए मैंने आपको पुत्र दे दिया। लेकिन ये पुत्र चला गया है, यही भौतिक संसार का नियम है। यहाँ आप कितने भी प्रकार से हर चीज को परमानेंट बनाने का प्रयास करो, कभी संभव नहीं। कोई स्थिति भी शाश्वत यहाँ पर नहीं है, कोई सुख यहाँ पर शाश्वत नहीं है, कोई शरीर यहाँ पर शाश्वत नहीं है, हर चीज अशाश्वत है। इसलिए आप दुख मत करो। और इस प्रकार से भगवान के भक्ति के बारे में उनको ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद राजा जब शांत हुआ, तभी उन्होंने, नारद मुनि ने उस बालक को उठाया और कहा, बालक उठो, देखो तुम्हारे माता पिता सब लोग यहां पर रो रहे हैं, आप कहां चले गए? तो बालक जागृत हो गया, और जागृत होकर यहां वहां देखने लगा, कौन मेरे माता पिता? हाँ, ये सत्य है। वो कहने लगा, कौन मेरे माता पिता? मैंने तो अनेकों जन्म लिए, कभी मैं देवता था, तो कभी प्राणी था, तो कोई कीटक था, तो कौन से जन्म के माता पिता की बात कर रहे हैं आप? हम लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। यही हमारी सत्य स्थिति है। तो बालक ने बहुत सुंदर तत्व ज्ञान महाराज चित्रकेतु के सामने प्रस्तुत किया कि मुझे जाने दीजिए, मुझे भगवान ने बुला लिया है तो मुझे जाने दीजिए, मैं वापस नहीं आ सकता। और ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद महाराज चित्रकेतु, सारी रानियां, ये सब लोग हृदय से निर्मल हो गए। जब सही ज्ञान हृदय में आता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जब दिव्य ज्ञान हृदय में आता है तो भगवान की दया से हमें सारी शांति, सारा जो 26 जो गुण हैं भक्त के, वो सारे भक्त के हृदय में प्रकाशित हैं। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जैसे जैसे ये ज्ञान आते रहेगा, भक्त जैसे भक्ति में प्रगति करेगा, सारे के सारे 26 गुण जो भक्तों के हैं, उसमें शांति भी एक है, ये सारे गुण अपने आप ही प्रकाशित होंगे। और इस प्रकार से एक साधारण राजा जो हमारे तुम्हारे जैसा ही था, एक महान भक्त बन गया। कितना महान कि भगवान के लिए एक मंत्र नारद मुनि ने उनको दे दिया, बोले ये मंत्र का 7 दिन पठन करो, 7वें दिन आपको भगवान के दर्शन होंगे, चाहिए आपको ऐसा मंत्र। तो मंत्र को स्वीकार किया, और 1 हफ्ते के बाद भगवान शंकरचंद स्वयं उनके सामने प्रकाशित हुए और उनको और अधिक ज्ञान भक्ति के बारे में दिया, उनको शक्तियां प्रदान की, सारी सिद्धियां मिल गई उनको, जिसके लिए हम लोग सब लोग काम ही रहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सारी सिद्धियां मिल गई। और वो विचरने लगे, विद्याधरों के एक प्रमुख बनकर अनेकों विद्याधर स्त्रियों के साथ विमान में विचलित होने लगे, घूमने लगे, प्रचार करने लगे भगवान का नाम, अत्यंत महान भक्त बन गए। और ऐसे में जा रहे थे कि एक दिन कैलाश पर उन्होंने देखा कि भगवान शिव जी सन्यासियों को, साधुओं को, ऋषिगणों को, ब्रह्मचारियों को प्रवचन दे रहे त्याग के ऊपर और सन्यास के ऊपर, और उस समय अपनी पत्नी उमा पार्वती उनके पैरों में बैठी हुई है। तो यकायक जब उन्होंने देखा चित्रकेतु ने कि क्या नजारा है, देखो कैसे भगवान शिव जी है कि पार्वती को साथ में बिठाकर भी संन्यास और त्याग की चर्चा कर सकते हैं। तो हंसने लगे और बोलने लगे कि कैसे शिव जी है जो पार्वती को गोद में बिठाकर संन्यास की बातें करते हैं। तो सारे जो संतगण थे वो तो समझ गए कि वो क्या बोलना चाहते, किस प्रकार से उनका गौरव करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी माँ पार्वती ने ये गलत समझ लिया कि ये निंदा कर रहा है। तो वो सोचने लगी कि इसको मैं कुछ श्राप दे दूँ और जोर से चिल्लाने लगी कि देखो ब्रह्मा जी, सारे देवतागण, चंद्र, वरुण, सूर्य, ये सब लोग, नारद, चतुष्कुमार, ये सब लोग ने आज तक कभी भगवान शिव जी के कोई कार्यों में किसी प्रकार का अभाव नहीं देखा, लेकिन ये कल का व्यक्ति ये मेरे पति के कार्यों में अभाव देख रहा है, इसलिए उसको राक्षसों ने प्राप्त हो जाए, उसे श्राप दे दिया। तुरंत ही विमान से उतरकर उन्होंने प्रणाम किया, माता को कहा, माता मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कोई आपसे ये नहीं चाहता कि आपने आप मुझे कुछ उशाप दो या मुझे क्षमा कर दो, आपने ये बोला है इसका मतलब इसकी कोई इसका कोई प्रयोजन है, मेरे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है और मैं उसी के प्रकार से उसको स्वीकार करता हूँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शिव जी वहाँ पर फिर बहुत प्रसन्नता से हंसने लगे और उन्होंने पार्वती को जब बताया, देखो ये वैष्णव है, ये वैष्णव है जो नरक में और स्वर्ग में, मृत्यु और जीवन में हर समय शांत रहता है, उसके अंदर कोई विचलितता नहीं आती, कोई उथल पुथल नहीं होती, ये वैष्णव है। और आगे जाके यही चित्रकेतु वृत्रासुर बना जिसकी कहानी हमने सुनी। तो ये भक्ति का प्रभाव है कि जो अत्यंत कठिन चीज लगती है, जो समुद्र की तरह अचल रहने के लिए हमें अपने आप सक्षम बनाती है, वो है भक्ति। अगर ये भक्ति हम करेंगे, और भक्ति का मतलब क्या है, सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित करना, अगर ये इतना करेंगे तो अपने आप ही शांति आ जाएगी। शांति आने के लिए और नया प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO इनके रिपोर्टर्स ने प्रश्न पूछा कि आपका जो भौतिक संसार में शांति प्रस्थापित करने के लिए क्या आपके पास फॉर्मूला है, पीस फॉर्मूला। तो प्रभुपाद ने उत्तर क्या दिया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ये जिसको जानकारी हो गई, जब सारे लोग इसको प्राप्त करेंगे, इस ज्ञान को, कि इस सारे संसार का और इस संसार के परे जितने संसार हैं उन संसारों का भोक्ता, हमारे यज्ञों का भोक्ता, हमारे कार्यों का भोक्ता एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान श्री कृष्ण। ये जो कोई भी जानता है उसको ही शांति प्राप्त होगी, लेकिन उसमें बाधा कौन सी है, बाधा हमारे संकल्प की है। हम भक्ति में आने के बाद भी भक्ति को भी अगर हमारे एंजॉयमेंट की तरफ से देखेंगे तो हम कभी शांति प्राप्त नहीं करेंगे भक्ति में होकर भी। जिस प्रकार से जब आप प्लेन चलाते हो, हवाई जहाज जब उड़ता है, तो ऐसा कहते हैं कि उसको बार बार लाइन पे लाना पड़ता है, 90% के समय हवाई जहाज हवा के कारण यहाँ वहाँ चला जाता है, लेकिन पायलट जो होता है वो बैठ के उसका काम एक ही है, वो कहीं पर भी जाए तो उसको वापस अपनी दिशा में लाना, तभी वो सही मार्ग पे पहुंच जाएगा, सही दिशा में जाकर अपना जो गंतव्य स्थान है उसको प्राप्त करेगा। उसी प्रकार से भक्ति में आने के बाद भी, जबकि हमने पहले हमारा गंतव्य स्थान निश्चित कर लिया है, क्या हम लोग हर सवेरे बोलते हैं, हम चाहते हैं कृष्ण प्रेम, बोलते हैं, चिल्ला कर बोलते हैं, एवरीडे मॉर्निंग वी से दिस, लेकिन बीच बीच में जहाज को कैसे लगाया जाएगा, इस प्रकार से मैं अब बहुत बड़ा प्रचारक बन गया, जहाज वहां चला गया। कोई बोला मैं बहुत बड़ा लाइव मेंबरशिप का भक्त बन गया, अभी मेरी वजह से मंदिर चलता है, जहाज वहां पर चला गया। कोई सोचता है मेरा जैसा उदाहरणीय गृहस्थ कोई है ही नहीं, जहाज कहीं और चला गया। जहाज यहां वहां पर जाएगा लेकिन उसको साथ में बार बार कहां लाना है, नहीं, भोक्ता रम्य तपसा, मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं जब जपा कर रहा हूं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मैं भोक्ता नहीं हूं। कभी कभी हम बोलते हैं आजकल आनंद नहीं आता जपा करने में, लेकिन आपके आनंद के लिए जपा है ही नहीं। जब आपके आनंद के लिए नहीं है वो भगवान को आनंद देने के लिए है। कभी कभी मन यहां वहां भटकता है लेकिन उसको फिर से कैसे भी करके स्ट्रगल करके भगवान के नाम पर लाना, तो उस समय आपको ऐसा लगेगा कि मैं कितना थक गया, उह दो घंटे में मैं थक गया, अभी मुझे सोना चाहिए। इतने थक सकते हो आप, मन यहां वहां आपको लेके जाएगा, लेकिन कृष्णा विल बी मोर प्लीज्ड विद दैट। भगवान श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मन को प्रयास से भगवान के ऊपर केंद्रित रखा। हिंदी में एक कहावत है, ये हमारे लिए सूत्र है असल में, कि हमारा ये जो भोक्ता रे मेघ तपसा प्रभुपाद इतना उसके ऊपर जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सूत्र है। हिंदी में कहावत है, नजरे बदली तेरी तो नजारा बदल जाएगा। क्या हम कैसा देखते हैं हर चीज को, उसको देखना सीखो, कि हर कार्य हमारे जीवन में जो जो घटनाएं बढ़ती होती है ये सब कुछ अगर उसको हम भगवान को केंद्र बिंदु रखेंगे, भगवान को ही उसका भोक्ता मानेंगे तो शांति निश्चित है। और इसी के वजह से ऐसे नहीं कि भक्त के जीवन में उथल पुथल नहीं होती है, भक्त की खाली नजर बदलनी चाहिए, भक्त का दृष्टिकोण बदलना चाहिए। उथल पुथल तो होगी ही होगी, प्रभुपाद के जीवन में भी उथल पुथल हुई। प्रभुपाद वहां पर अहमदाबाद में बैठे हैं, यहां पर भक्तों ने क्या किया, जुहू की जो जमीन है वापस दे दी। प्रभुपाद लेक्चर देने वाले, अभी जय राधा माधव खत्म हुआ है तभी वो मैसेज आता है, तभी वो तार आती थी, तार टेलीग्राम कि प्रभुपाद वी हैव गिवन अप द लैंड। प्रभुपाद उस समय आप सोच सकते कि अभी लेक्चर देने वाले उस समय ऐसी घटना सुनते हैं, फिर भी प्रभुपाद ने शांति से लेक्चर दिया और लेक्चर के बाद उसको तुरंत दूसरा खत लिखा, बोला डोंट वैकेट द लैंड। फिर उनको सब इंस्ट्रक्शन दी, उसी ट्रेन से भक्त को वापस भेजा, बोले लैंड से निकलना नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे मैंने राधा रास बिहारी को प्रॉमिस किया हुआ है, उनको वहां बिठा के आया हूं, उनकी जगह मैं उसको छोड़ नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए, ये भक्त है। तो इसलिए हमें ऐसे भक्तों के संग में रहना चाहिए, प्रभुपाद के संग में रहना चाहिए। प्रभुपाद की कहानी सुनकर, उनके तात्पर्य पढ़कर, यहाँ पर कितने सारे भक्त हैं जिन्होंने अपना केंद्र बिंदु बना लिया है। भगवान का यश यही हमारा यश है, उनका प्रचार यही हमारा कर्तव्य है। और इस प्रकार से जब दृष्टिकोण को बदलेंगे, भोक्ता रे मेघ तपसा सर्वलोक महेश्वरी जानेंगे, तब शांति उसी प्रकार से आएगी जैसे शरद ऋतु में यहाँ पर वृंदावन में हम देख रहे हैं, झीलें बिल्कुल शांत हो गई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रश्न नहीं लेंगे क्योंकि समय हो चुका है।